తత్పదం దర్శితం యేన తస్మై శ్రీగురవే నమః శంకరం శంకరాచార్యం కేశవం బాదరాయణం సూత్రభాష్యకృతౌ వందే భగవంతౌ పునః పునః ఈశ్వరో గురురాత్మేతి మూర్తిభేద విభాగినే వ్యోమవద వ్యాప్తదేహాయ దక్షిణామూర్తయే నమః ఓం శాంతిః శాంతిః శాంతిః. సద్గురుజీ కీ బక్షస్ సే కృపా సే హమ్ మహారాజ్ జీ కే ఆశీర్వాద్ సే హర్ రోజ్ బైఠ్ కర్కే ఉన్కీ తపస్థలి మే బైఠ్ కర్కే ఉన్కే చరణో మే బైఠ్ కర్కే వేదాంత కా చింతన్ కర్తే హై జిస్ మార్గ పర్ ఉన్హోనే హమారే కో చల్నే కే లియే ప్రేరిత కియా హై. యే ఉన్హీ కీ ధారా హై జో బహ్ రహీ హై ఉస్కే అందర్ హమ్ లోగ్ ఐసీ జో గంగా హై జ్ఞాన్ కీ గంగా హై ఉస్మే హమ్ లోగ్ డుబ్కీ లగానే కీ కోషిష్ కర్తే హై. బహుత్ సుందర్ చర్చా ఆప్ శ్రవణ్ కర్ రహే థే. యే జబ్ తక్ హమారా అహమ్ హై తబ్ తక్ హమారే కో జిత్నే సంసార్ కే బంధన్ హై కష్ట్ హై తభీ తక్ ప్రతీత్ హోతే హై జబ్ తక్ అహమ్ హై. तो अहम हमारा अहम तो रहेगा ज्ञान होने के बाद भी अहम रहेगा, तब भी हम क्या बोलेंगे, अहम ब्रह्मास्मि, मैं हमारी जाएगी कहीं नहीं. यानी कि मैं जब तक है तब तक कष्ट है, तो बाद में मैं चले जाएगी, मैं कहीं नहीं जाएगी. जैसे कह रहे थे ना, जब किश्ती का रुख मोड़ा तो किनारे बदल जाते हैं, तो मैं तो रहेगी, मैं कहीं जाएगी नहीं. केवल मैं को समझने की बात है कि कौन सी मैं रहेगी, कौन सी मैं जाएगी. मैं हमारी शास्त्रकार महात्मा लोग जो कहते हैं, कहते तीन प्रकार की हमारी मैं है, तीन प्रकार का हमारे को अहम होता है. अहम तो एक ही प्रकार का है, लेकिन उसको बांटा है तीन प्रकार में. शास्त्रकार कहते हैं एक होती है गौण अहम होता है, दूसरा होता है मिथ्या अहम होता है, और तीसरा यथार्थ अहम होता है. तो गौण कौन सा है, मिथ्या कौन सा है, यथार्थ कौन सा है, बात इतनी समझने वाली है. उसके बाद तो इतना पुटे इधर लौना जो कहा था बात उतनी है, लेकिन इसको समझने की चेष्टा करनी है. वही कल कह रहे थे ना भगत जी के सूक्ष्म बुद्धि से, सूक्ष्म बुद्धि चाहिए. सूक्ष्म है सूक्ष्म, वो इतना सूक्ष्म है कि उसको सूक्ष्म से सूक्ष्म बुद्धि चाहिए. व्यापक से व्यापक है और सूक्ष्म से सूक्ष्म है. तो उसको समझने के लिए लौकिक दृष्टांत से हम समझ जाते हैं. जो हमारे व्यवहार में आता है ना, उसको देख करके हम बहुत जल्दी समझते हैं, क्योंकि हमारी आसक्ति ही व्यवहार में रहती है जितनी. और व्यवहार हमारा क्या, हमारी कल्पना है. व्यवहार नाम की और कोई चीज नहीं है, हमारी कल्पना ही हम व्यवहार करते हैं. तो गौण जो हमारा अहम है वो कहाँ है, वो है हमारे इस शरीर के साथ जितने संबंध रखने वाले पदार्थ हैं उनके अंदर जो हमारी मैं है ना, उनके साथ वो हमारी गौण है. और ये हमारा शरीर, तीन शरीर, इंद्रिय, प्राण, इसमें जो हमारा अहम है वो मिथ्या अहम है. और जो हमारा सच्चिदानंद स्वरूप है वहां जो हमारी मैं है वो यथार्थ है. कैसे, आप कहेंगे इतना कहने से भी क्या होता है. जैसे आप व्यवहार में देखते हैं कि हमारे साथ कोई भी व्यवहार में कोई घटना होती है ना, जब कोई विशेष घटना हमारे साथ घटती है, मानो हमारा कोई प्रिय जो होता है उसका मिलन होने के बाद कभी भी योग होता है, भाव उसकी डेथ हो जाती है, कोई उसका नुकसान हो जाता है, तो हमारी अटैचमेंट उसके साथ जब है तो हम क्या कहते हैं. आप बोलेंगे कोई आपको अचानक फोन आता है कि आपका फलाना जो प्रिय है उसकी डेथ हो गई या उसका ये नुकसान हो गया, तो आप तुरंत क्या शब्द बोलते हैं? आप कहते हैं मैं मर गया, बोलते हैं कि नहीं? मैं गया। कोई भी देखते हैं आप एकदम तो कहेंगे मैं गया। तो इसका मतलब क्या हुआ? हमारी मैं कहीं थी, वहां थी ना, गया तो वो है, आप थोड़ी गए हैं, लेकिन अटैचमेंट मैं हमारी वहां है, गौण मैं है ना वो, उसको हटाएंगे तभी जब जानेंगे कौन सी मैं है। ये मैं है, मैं गया, मैं मर गया, मेरा नुकसान हो गया, मैं लुटिया गया, यही तो बोलते हैं ना। ये हमारी गौण मैं है, जिस मैं की बात कर रहे थे वो मैं हटेगी तभी जब मैं उसको जानेंगे हम। इस मैं को हटाना है कि जब वो जा रहा है, उसका शरीर जा रहा है, हमारा घर मानो किसी ने चोरी कर लिया, कोई अग्नि लग गई, कोई हमारी कार टूट गई, कुछ भी हुआ, लेकिन उसमें हमारा क्या बिगड़ा? फिर भी हमने मैं उसको, इसका मतलब हम एक मान रखा है ना, कार के साथ, कोटी के साथ, पति के साथ, पत्नी के साथ, हमने उसको अपना आप मान रखा है, अटैच इतने हो गए हैं कि उसको हम मैं समझते हैं, मैं ही हूं, ये अलग नहीं है। तो ये वाली मैं जो जब तक रहेगी तब तक हमारे को प्राप्ति नहीं होगी। जिस प्राप्ति, प्राप्ति तो करनी कुछ नहीं है, लेकिन व्यवहार में कहा जाता है कि प्राप्ति करनी है। वो जो प्राप्ति व्यवहार में हम कहते हैं इस मैं को छोड़ेंगे तभी होगा। जितना प्रपंच दिखाई दे रहा है आपको ये सब गौण मैं है, इस गौण मैं को हटा देंगे तो क्या बचेगा? कुछ नहीं बचेगा ना, तब हम अपनी मैं में आएंगे। इसको हटा करके ब्रह्मांड की मैं को, फिर हमारी आती है मिथ्या मैं। जब इसका कुछ नुकसान होता है, शरीर के ऊपर कोई प्रहार होता है, कोई चोट लगती है, तब भी कहते मैं गया, मैं मर गया, आंख को लगा, कान को लगा, कहीं भी कोई चीज लगती है, या हमारे अंतःकरण में कभी जो मानसिक दुख होता है, तब भी कहते मैं गया, मैं मर गया, मैं दुखी हो गया, मैं सुखी हो गया। तो इसका मतलब यदि हम गौण मैं को त्यागते हैं, पहली बात तो वो त्यागी नहीं जाती, यदि उससे समझ के हटेंगे तो फिर इसमें आ जाते हैं। इसका जितने पार्ट हैं उसमें हमारा कुछ लेना देना नहीं है। सजातीय विजातीय स्वगत भेद, तीन भेद आपने सुने ही हैं। जब सजातीय विजातीय स्वगत भेद हमारे में नहीं है, तो ये स्वगत भेद है, स्वगत होता जो अपने आप में भेद होता, अपने अंगों में भेद होता, सो स्व में जो रहने वाला, गत मतलब रहने वाला, स्व मतलब अपने आप में रहने वाला, अपने शरीर में जो हमारे हाथ कान पांव जो कुछ हैं, ये स्वगत भेद है, इससे भी हम रहित हैं। क्योंकि एक मेवा द्वितीयम ये कहा है ना कि परमात्मा कैसा है, एक मेवा द्वितीयम। तो आइए महाराज जी, आइए महाराज जी, चाबी देना अपने जुराबे लेकर, जुराबे ला दो। तो जब हम गौण मय को सोचते हैं ना, ये है हमारी गौण मय, जो इस शरीर के साथ संबंध रखने वाले लोगों में ममता जिसको हम कहते हैं, कहते हैं तो उसको ममता है, लेकिन वो मय का ही रूप है। वो ममता जो होती हमारी इस शरीर में नहीं होती, शरीर से इतर जो शरीर के साथ संबंध रखने वाले हैं उसमें हमारी ममता होती है, वो हमारी गौण मैं है। उस मैं को हटाएंगे तब आ जाएंगे मिथ्या मैं में। तो ये जो शरीर के साथ हमारा अटैचमेंट है, अंगों के साथ, कान नाक हाथ पांव अंतःकरण प्राण के साथ, ये हमारा मिथ्या अहम है, मिथ्या, क्योंकि ये मिथ्या है। तो इसके साथ भी हमारा, जब इसका कोई नुकसान होता तब भी हम अपने आप में ले लेते हैं। ये इस मैं को छोड़ना है। जब इन दो मैं को छोड़ देंगे ना, दो जगह हमारी मैं जो अटैचमेंट हुई उसको छोड़ देंगे, तो बाकी क्या बचेगा? यथार्थ अहम बचेगा, वो कभी भी जाएगा नहीं, उसको कहीं जाना नहीं है, ना वो कहीं से आया है ना जाना है। ये मिथ्या में और गौण में जो हमारी अटैचमेंट है वो रहने वाली नहीं है, कल्पित है वो, लेकिन जो यथार्थ मैं है वो कहीं नहीं जाएगा। जब आप ब्रह्म ज्ञानी हो जाएंगे, भाव आप स्वरूप में स्थित हो जाएंगे ना, तब भी आप बोलेंगे मैं खाना है, मेरे को भूख लगी है, मैं जा रहा हूं, मैं आ रहा हूं। उस मैं को तो आप छोड़ ही नहीं सकते कभी भी, ब्रह्म ज्ञान के बाद भी नहीं छोड़ सकते आप। जब आप स्वरूप में स्थित हो जाएंगे तब भी आप यही बोलेंगे कि मैं छोटा हूं, मैं बड़ा हूं, मैं क्षत्रिय हूं, मैं ब्राह्मण हूं, लेकिन वह फिर आपका केवल व्यवहार मात्र रह जाता है। जो आपका गौण मैं थी, जो आपका गौण अहम था, जो मिथ्या अहम था, वो समाप्त हो गया। तो यथार्थ मैं तो रहेगी, उसको मैं को या तो आप यथार्थ मैं समझ के छोड़ दीजिए, या फिर जब हम भक्ति का मार्ग चुनते हैं ना, भक्ति का, तब हमारे को उसको उसका तरीका बदल जाता है। जब ज्ञान का मार्ग चुनेंगे तब तो अहम ब्रह्मास्मि वाला मार्ग हो जाता है, जब भक्ति वाला मार्ग होता है मैं तब भी हमारी चले जाती है, लेकिन वो किस रूप में जाती है, उस समय हमारी मैं का अभाव होता है तू में। अभाव तो उस समय भी हो जाता है मैं का, जब हम ज्ञान का मार्ग चुनते हैं ना, तब तो हमारा केवल एक में हम रह जाते हैं, एक हो जाते हैं। जब हम भक्ति का मार्ग ग्रहण करते हैं तो तब दो होते हैं, एक नहीं होता है। तब हम अपनी मैं को किस में अभाव करेंगे, तू में। उसी बात को कहते हैं कि तू तू करता तू हुआ। वो कौन सा मार्ग है, भक्ति का मार्ग। लोग कहते हैं कबीर साहब जो है भक्ति मार्ग के पोषक नहीं है, भक्ति मार्ग को मानते नहीं, वो तो ज्ञान मार्ग ही है। लेकिन वो ऐसी बात नहीं है, जो तत्ववेत्ता होते हैं ना, जैसे शंकराचार्य महाराज को लोग कहते हैं कि उनका ज्ञान खुश्क है, क्योंकि वो भक्ति की बात नहीं करते, उपासना की बात नहीं करते। ऐसा नहीं होता है, जो भी तत्ववेत्ता होते हैं ना, उनको हर किसी का कल्याण करना होता है, वो हर किसी को, हर जो भी किसी मार्ग का पंथ ही होता ना, उसको वैसा ही मार्ग बतलाते हैं। तो यहां पर कहते हैं कबीर तू तू करता तू हुआ, मुझ में रहा ना हूं। हूं का अर्थ क्या, अहम जो था, शरीर का अहम था, प्राणों का अहम था, इंद्रियों का अहम था, या फिर ममता थी गृह आदि की, घर आदि की, कोठी की ममता, घर की ममता, संबंधियों की ममता, ये जो मैं थी उस मैं को उन्होंने कहां अभाव किया, तू में। क्योंकि उन्होंने अपनी मैं को तू के अंदर समाहित कर दिया, अपना भाव छोड़ करके दूसरे को, एक परमात्मा को मान लिया कि मैं सेवक हूं, वह स्वामी है। इसलिए या तो हम केवल स्वामी पना ही रह जाए हमारा, तब भी हमारी जो मिथ्या मैं है उसका भाव हो जाएगा, अपने आप में हो जाएगा। क्योंकि सारा जो संसार दिखाई पड़ रहा है, आपको कह रहे थे ना कि स्वामी जी ने बोला कि मेरे को उससे इतर कोई देखता ही नहीं है। उससे इतर क्या, मेरे से इतर, भाव मेरे से अलग कुछ हुआ ही नहीं। या तो ऐसा चिंतन करते हैं महात्मा लोग, या फिर नेति नेति करके चिंतन करते हैं कि कुछ भी नहीं हुआ, ना इति ना इति, या दूसरी प्रकार से चिंतन होता हुआ विधि मुख से, यतोवा इमानी भूतानि जायन्ते येन जातानि जीवन्ति। उसका अर्थ होता है कि जिस परमात्मा से ये सारा नाम रूप आत्मक प्रपंच उत्पन्न हुआ है और जिसके अंदर रह रहा है, जिसके अंदर समाहित हो जाएगा, ये विधि मुख है। हमको निषेध मुख से चिंतन करना बहुत कठिन पड़ता है। ये किसी किसी की जो उत्तम अधिकारी होता है ना, वो नेति नेति करके चिंतन कर सकता है। इसलिए शास्त्रकारों ने कहा कि नेति नेति से यदि ना समझ में आए तब फिर विधि मुख। तो विधि मुख में पहले प्रपंच को खड़ा करना पड़ता है। जैसे हम कोई मकान बनाते हैं ना, मकान बनाते हैं, या कोई जैसे आजकल प्लास्टिक की कोई चीज बनती है, जैसे मोमबत्ती बनती है, प्लास्टिक के आदमी बच्चे खिलौने बना देते हैं ना वो, तो बाद में क्या कहते हैं कि असली नहीं है, देखने को तो लगता असली है। जैसे आजकल आपने देखा होगा चम्मच आते हैं, चम्मच ग्लास आते हैं, मेरे को किसी ने रास्ते में दिए, मैं आ रहा था तो मैंने उनको बोला कि इतना कष्ट आपने क्यों किया, ये स्टील के ग्लास हमारे हम कहाँ रखेंगे। वो कहते बाबा जी स्टील के नहीं है। मेरे को तो ये हुआ, मैंने कहा रास्ते में पानी पीना है, उसके बाद कहाँ, वहां तो हमारे को मिल जाएंगे। वो कहते स्टील के नहीं है। तो मतलब क्या हुआ, बाद में पता चलता है कि ये असली नहीं है, लेकिन जब तक बनेंगे नहीं तब तक पता कैसे चलेगा कि असली कौन है तो नकली कौन है। तो पहले प्रपंच को खड़ा करके दिखाते हैं महात्मा लोग कि पहले पांच भूत उत्पन्न हुए, फिर उससे अपंचीकृत भूत हुए, फिर सूक्ष्म शरीर हुआ, फिर उनका पंचीकरण हुआ, फिर स्थूल शरीर हुआ, ये सब क्या दिखाने के लिए है आपको, इसमें प्रवेश कराने के लिए नहीं है कि आप इसको सत्य मान लो कि ऐसे हुआ, हुआ कुछ नहीं है, केवल उनको आपको दिखाने के लिए होता, बाद में कहते ये कुछ नहीं हुआ। इसलिए कहते जब तक ब्रह्म में अज्ञान की सिद्धि नहीं होगी, अध्यास की सिद्धि नहीं होगी, तब तक मोक्ष का प्रश्न ही नहीं होता है। जब मोक्ष का प्रश्न नहीं होगा तब शास्त्र और गुरु सब व्यर्थ हो जाएंगे। इसलिए पहले हमारे को महात्मा लोग उपोधकात से दिखाते हैं कि ये संसार ऐसे ऐसे दिखाई पड़ता है, प्रतीत होता है। हरिओम हरिओम। बाद में बताते हैं कि ये कुछ नहीं हुआ। तो समझना हमारे को ऐसे ही है कि जो दिखाई पड़ता है वो है नहीं, लेकिन जब तक समझ में नहीं आता तब तक लगता कि है, दिखता भी है, हम व्यवहार भी करते हैं। घड़ा अब कहेंगे नहीं है, घड़ा तो है, उसे हम पानी में लाते हैं, लेकिन जब घड़ा टूट जाता तो फिर कहाँ चला गया? यदि होता तो उसको टूटना नहीं चाहिए, टूट के बाद में दिखना नहीं चाहिए, दिखने से भी समाप्त हो जाता वो। इसका मतलब घड़ा था ही नहीं, लेकिन प्रतीत हो रहा था वर्तमान में, ना पहले था ना बाद में रहता, वर्तमान में दिखता है। तो जो वर्तमान में होता है, पहले नहीं होता, बाद में होता, वो सत्य कभी नहीं होता। जो सत्य होता वो तीनों कालों में रहता है। तो यही समझने की बात है कि हमारा अहम जो कह रहे थे ना महाजन जी के मैं को मिटाना है, लेकिन मैं कौन सी मिटानी है ये भी तो समझना पड़ेगा ना। मैं तो हमारी रहेगी बाद में भी, लेकिन जो गौण मैं है, जो मिथ्या मैं है उसको हटाना है, जो यथार्थ मैं है उसको समझना है। उसके लिए तो प्रश्न होता मैं कौन हूं। जब मैं ही खत्म हो जाएगी तो प्रश्न कौन सा? जब मैं है तभी तो प्रश्न होता कि मैं को समझना कि मैं कौन हूं। तो यदि मैं खत्म हो जाए तो फिर समझेगा कौन किसको? मैं को समझना कौन सी मैं मेरी अच्छी मेरी है और कौन सी मेरे को ऊपर से थोपी गई है या मैंने कल्पित की है, उस मैं को हटाएंगे। उसी के लिए महाराज जी कह कि हौ हौ मैं विचों खोवे दूजा मेटे एको होवे। जो हौ हौ का अर्थ अहम अहम जो करता है ना, ये मतलब पदार्थों के साथ जो हमारी अटैचमेंट है उसको लेकर के जो हौ हौ हम करते हैं। हौ हौ का अर्थ क्या है? अहम अहम। और मैं का अर्थ है मेरा मेरा। मैं और मोर तोर तय माया जिन कीने बस जीवन काया भाव। जितने लोग उतने बस में किए किसने? मैं और मेरा, तय और तेरा। इतनी चीज ने सबको बस किया है ना, सारा संसार इन चार शब्दों का ही विषय है, मैं और मेरा, तय और तेरा। और कोई चार से अलग शब्द कहाँ है? मैं मेरा में और तू तेरा में सारा प्रपंच आ जाता है। जिसकी बात हम लोग कर रहे हैं ना कि ये जो तीन अवस्था है ना, सब प्रपंच है, वो क्या है? सब प्रपंच सो भिन्नना ही है, बात तो यही चल रही थी। उसके बाद में आया था कि ये जो तीन दशा है ना, ये जैसे सीपी में रजताती सीपी में जथा, उसी प्रकार ये तीन जो अवस्था है ब्रह्म में तथा, ये हमने विचार किया था। अब आगे कहते हैं कि रजतादिवत दृश्य जे मृषा। बात तो हर पंक्ति में वो ही आती है, रजतादिवत दृश्य जे मृषा। रजतादि को हमने समझ लिया ना, यदि तभी पता चलेगा। रजतादि सुन लिया अलग बात है, समझ लिया अलग बात है। सुन तो लिया हमने कि रजतादि सीपी में जैसे भासते हैं, जैसे यद्यपि और तद्यपि आता है। जहां यद्यपि आ जाता ना वहां तद्यपि होता है। यद्यपि का अर्थ ही प्रश्न होता है, यद्यपि ऐसा है फिर भी कुछ है उसमें और भी, यद्यपि ऐसा है तो फिर भी कुछ है, यही प्रश्न होता है ना। यद्यपि ये मिथ्या हैं, फिर भी क्या? जब फिर भी लगता ना साथ में, उसका अर्थ इसके पीछे कुछ और है। जब हम कहते ना महाराज जी कि यद्यपि ऐसा है तब भी कुछ और भी है, तो तब भी जहां लगता है ना वहां विकल्प रहता है। जहां भी शब्द लगता है ना वहां विकल्प रहता है। वहां कुछ कहने के सुनने के लिए कुछ होता है, यहां ही लग जाता है, वहां कुछ कहने सुनने के लिए बाकी बचता नहीं है। जैसे हम कहते हैं ना कि कर्म जो है ना, कर्म एक पुण्य कर्म है, एक पाप कर्म है, तो हम कहते हैं कि पाप कर्म जो है ना, पाप कर्म वो बांधते हैं, बंधन का कारण है, पाप कर्म बंधन का कारण है, तो पुण्य कर्म भी बंधन का कारण है, भी पुण्य भी बंधन का कारण है। लेकिन भी कहने से क्या हुआ कि यदि वो कर्म आप निष्काम करोगे तो उनके द्वारा छूटने के लिए भी अवसर है। भी कहा है, ही नहीं कहा। पाप के साथ लगता कि पाप कर्म बंधन के ही कारण है, बंधन के ही कारण है, और पुण्य कर्म भी, पुण्य कर्म यदि निष्काम करेंगे तो उसमें से आशा है कि हम निकल सकते हैं, लेकिन पाप कर्म बंधन के ही कारण है, उनसे और कुछ नहीं होना है। तो जब ये बात कहते हैं ना, तो ये कहते हैं कि रजतादि सीपी में जथाए कहा, उसके बाद क्या, रजतादिवत दृश्य जय मृषा, जैसे रजत आदि मिथ्या हैं, रजतादि जैसे, मृषा मतलब मिथ्या हैं, रजतादि मिथ्या हैं, जैसे शुगतिकादिवत ब्रह्म अमृषा। रजतादि को तो समझ लिया हमने कि रजत का तो समझते हैं, रजत कहते बोलते हैं, समझ नहीं आया, कितने दिन से रजत बोल रहे थे आपको समझ में नहीं आया, तो आपने बताया क्यों नहीं। रजत का तो था चांदी, समझ गए, रजत शब्द जो है संस्कृत का है, चांदी को बोलते हैं रजत, समझ गए, रजत का अर्थ है चांदी। जब भी रजत कोई बोले, या रूपा बोले, कोई रूपा, रूपे की अकारा बहुत विस्तार है, ये भी आता है, रूपे की अकारा बहुत विस्तार, रूपा भी कहते हैं महाराज जी वाणी में आया, रूपे की अकारा बहुत विस्तार। तो इसलिए जब रजत आएगा तो रजत का अर्थ होता है चांदी। ये कहते हैं कि रजत है या कागज है या भोडल है, तीन चीजें भासती ना सीपी में, तीन चीजें भासती है, भासती का अर्थ, भासने का अर्थ क्या होता, प्रतीत होना, दिखना, समझ गए, शब्द कोई भी होता उसको नाम समझ में आए तो बोला करो आप, समझ गए ना, बोलने से पता चलता है। भास का अर्थ होता है कि प्रतीत होना, दिखना, दिखाई पड़ना, समझ गए। तो रजत आदि, रजत आदि से क्या कह लेना, रजत है, कागज है, भोडल है, ये तीन चीजें सीपी में इनका भ्रम होता है कि सीपी में कहीं लगता किसी को कि यहाँ कागज पड़ा है चांदी जैसा, किसी को लगता चांदी ही पड़ी है, किसी को लगता भोडल है, उसमें दूर से ऐसा लगता है, जब पास में जाएंगे तो कुछ नहीं होता है। ये कहते भी रजत आदि जैसे मिथ्या है ना सीपी में, है तो नहीं ना, मिथ्या का अर्थ होता है जो होता नहीं है लेकिन प्रतीत होता है, उसको मिथ्या कहते हैं। कई बार वो शब्द रिपीट करने पड़ते हैं, मिथ्या और असत दो शब्द होते हैं, पहले बताया था, फिर ख्याल रखना, मिथ्या और असत दो शब्द होते हैं। मिथ्या उसको कहते हैं जो वास्तव में होता नहीं लेकिन प्रतीत होता है, समझ गए, किसको मिथ्या कहते हैं, जो प्रतीत होता है, दिखाई पड़ता है परंतु वास्तव में नहीं होता, उसको मिथ्या कहते हैं। और असत किसको कहते हैं, ना सतो भाव्यते कहते हैं ना, ना विद्यते भावो, उसका कभी भी भाव नहीं होता, ना सतो विद्यते भावो, ना भावो विद्यते सतः। ये भगवान कृष्ण का अटल निश्चय विश्वास वाला उपदेश है कि असत का कभी भाव नहीं होता। भाव का अर्थ समझते हैं, नहीं समझेंगे, असत की कभी विद्यमानता नहीं होती, भाव का अर्थ होता विद्यमानता, और विद्यमानता का अर्थ समझते हैं, नहीं समझते ना, विद्यमान का अर्थ होना, होना, समझ गए, हम लोगों कहें हम विद्यमान हैं, फलाना आदमी विद्यमान मतलब है, तो असत का कभी भी होना नहीं होता, वो कभी होता नहीं है सत, जो सत है उसका कभी अभाव नहीं होता, किसी भी काल में देश में सत का कभी अभाव नहीं होता, सत, सत का अर्थ है तीनों कालों में रहने वाला। तो तो असत उसको कहते हैं जो ना प्रतीत होता है, ना वास्तव में होता, ना प्रतीत ही होता, वो असत होता है। जो मिथ्या है वो होता तो नहीं है लेकिन दिखता है। जैसे रज्जू में जो सर्प है ना, रज्जू में सर्प वो हो है तो नहीं है लेकिन प्रतीत होता है, मिथ्या है ना वो। सीपी में चांदी है नहीं है लेकिन प्रतीत होती है। लेकिन जो सया होता ना, सया पंजाबी में बोलते हैं, खरगोश होता ना, उसके सींग होते हैं क्या? सींग होते हैं उसके, उसके कान होते हैं ना, सींग तो नहीं होते। उसके सींग होते भी नहीं और दिखाई भी नहीं पड़ते, कभी नहीं होते ना दिखाई पड़ते हैं, इसलिए वो असत हैं। शासकीय जो श्रृंग हैं वो असत हैं। बंध्या का पुत्र जो होता ना, बंध्या का पुत्र वो कभी हुआ भी नहीं और किसी ने देखा भी नहीं है। बंध्या किसको बोलते हैं? बंध्या, बंध्या बोलते हैं ऐसी माता जिसको पुत्र पैदा करने की शक्ति नहीं, जिसमें बांझ भी बोल देते हैं, बंध्या भी बोल देते हैं, भाव पैदा नहीं कर सकती, पुत्र संतान नहीं पैदा कर सकती। उसका पुत्र ना कभी हुआ है ना कभी किसी ने देखा है, असत है वो। आकाश में फूल कभी खिलते नहीं है, खिलते हैं क्या? ना कभी आकाश का फूल कभी हुआ ना किसी ने देखा है, वो असत है। समझ गए? असत और मिथ्या समझ गए कि नहीं? पूरी जिंदगी याद रखना चाहिए, असत और मिथ्या का पता चल गया आपको कि नहीं? अभी मिथ्या उसको कहते हैं जो होता नहीं लेकिन प्रतीति होती है, असत उसको कहते हैं ना प्रतीत होता है ना होता ही है। समझ गए? तो ये संसार जो है ना, ये कह रहे हैं कि रजतादि के वक्त मिथ्या है, इसका मतलब क्या हुआ? है तो नहीं है वास्तव में पर दिखाई पड़ता है, तो वास्तव में तो नहीं है ना, दिखाई जो पड़ता है वास्तव में हैगा नहीं, तो उसके ऊपर विश्वास करेंगे आप? कोई विश्वास करेगा? कोई कहेगा जी आपको जो दिख रहा है ये है नहीं है, तो उसको आप क्या समझेंगे? जैसे टीवी में हम फोटो देखते ना, फोटो वो केवल दिखाई मात्र है ना, वो है तो नहीं है। जिसकी फोटो आदमी तो अलग है लेकिन फोटो जो दिख रही है वो नहीं है। टीवी का स्विच बंद करेंगे तो फोटो गायब हो जाएगी, नहीं ना रहेगी, लेकिन दिखाई तो पड़ती है। जब दिखाई पड़ती तो इसका मतलब क्या? मिथ्या है वो, है नहीं है, मिथ्या है, प्रतीत होती है। तो संसार जो है मिथ्या है, भाव प्रतीत होता है लेकिन रहेगा नहीं, है नहीं, तो फिर भी हम क्यों उसके साथ अटैचमेंट हो रहे हैं? हमारे को विश्वास नहीं हो रहा, हमने उसको मिथ्या माना ही नहीं है। असत मानना तो दूर की बात है। महाजन जी कह रहे थे ना कि शंकराचार्य की बात जो आपने बोली उसको मैं खोल रहा हूं, मैंने कहा खोलना तो बहुत दूर की बात है इसको। शंकराचार्य जी तो कहते हुआ ही नहीं, असत है वो, मिथ्या नहीं कहते हैं वो, मिथ्या भी कहते हैं ब्रह्म सूत्र में, ऐसी बात नहीं है। लेकिन जहां वो अजातवाद की बात करते हैं ना, मांडुक्य उपनिषद में, वो कहते हुआ ही नहीं कभी, तीनों कालों में हुआ ही नहीं, है ही नहीं, है भी नहीं और दिखाई भी नहीं पड़ता। जो उत्तम अधिकारी उनको दिखाई भी नहीं पड़ता, लेकिन वो अजातवाद है, वो उत्तम अधिकारी के लिए है, हम लोगों के लिए नहीं है। हम लोगों के लिए नीचे आना पड़ता उनको थोड़ा सा, कि है तो जरूर दिखाई पड़ता है लेकिन है नहीं। तो जो और नीचे आ जाते हैं ना, वो कहते हैं, जो वैष्णव लोग हैं वो कहते हैं जगत भी सत्य है और परमात्मा भी सत्य है, वो ये कहते हैं
स्वप्न वक्त,
हाँ ये कहते हैं वो, कि ये परमात्मा भी सत्य है और जीव भी सत्य है, ईश्वर भी सत्य है, जगत भी सत्य है। तो मिथ्या को समझेंगे जो ज्यादा आचार्य लोग हैं, मिथ्या के पक्ष में है कि प्रतीत तो होता है लेकिन मिथ्या है। असत वाला तो कोई कोई होता है, गुरु महाराज जी भी गुरु ग्रंथ साहब में कभी कभी जो है असत्य की भी बात करते हैं लेकिन ज्यादा मिथ्या की बात करते हैं। मिथ्या भर्म अर्सुप मनोर्थ ऐसा कहते हैं, मिथ्या भर्म अर्सुप मनोर्थ सत पदार्थ जान्या सुकृत मनसा गुर उपदेशी जागत ही मन मान्या। ये बात कही उन्होंने कि मिथ्या कैसे बता रहे महाराज जी, मिथ्या भर्म और स्वप्न मनोरथ। जो हमारा मनोरथ है, जो हमारा संकल्प है, भाव हमारे संकल्प की बनाई हुई जो सृष्टि है मिथ्या, यही कहा ना महाराज जी उन्होंने, नामदेव जी का ये वचन है कि मिथ्या जो हमारे संकल्प की बनाई हुई सृष्टि, भाव हमारे मन से हमने उत्पन्न की ना, ये मेरा माँ है, ये मेरा प्यो है, ये मेरा कार है, मेरी कोठी है, मेरा मैंने उत्पन्न किया ना, ये है थोड़ी है, कहीं हमने बनाया है ना ये। जब हम उसमें से अपनी अटैचमेंट हटा देंगे तो मेरा नहीं रहता। आज वो कार हमारी है, कल को हमने बेच दी कार वो, तो फिर किसकी, क्या किया हमने, हमने अपनी मैं जो उसके ऊपर छाप लगाई थी वो हटा दी है, कार कहीं नहीं गई, कार दूसरे का वही है, घर आज हमारा है, हमने बेच दिया तो उस घर से आगे से हम रोज निकलते हैं। कभी कहा आपने, जब एक बार बेच देते हैं कोठी को उसके आगे से हर रोज निकलते जाएं भले, आप कभी नहीं कहेंगे। हाँ जब कोई पूछेगा तो कहेंगे मेरा था, अब मेरा नहीं है। तो किसका हमने बनाया, हमने बनाया था ना उसको, हमने अपने मन से उसके ऊपर मालकियत का चिन्ह लगाया था। इसलिए जो मकान में रहता ना किसी किराए पे मकान में, तो किराएदार कभी भी नहीं कहता कि मैं इसका मालिक हूं, कहता नहीं है। जब कभी 10-20 साल उसको रहते रहते हो जाए तो उसको कई बार भ्रम हो जाता है कि अब मेरे को यहां से कोई निकालेगा नहीं, तुम कौन हो मेरे को कहने वाले, मेरे को जहां 20 साल हो गए। यह जहां ही माताएं कहती हैं किसी को कहो ना कि माता यहां जोड़ा मत लेके आना, कहते हमारे को 60 साल हो गए, तो उसका मतलब क्या हुआ कि 60 साल यहां पहले सत्संग करने आते रहे, 60 साल के बाद वो सत्संग का महत्व ही समाप्त हो गया, 60 साल के बाद ये होना लगा कि ये तो हमारा है, महात्मा महात्मा कुछ नहीं होते, भ्रम हो गया ना उनको, उनको बस एक ही बात आती है कि हमारे को जहां 60 साल हो गए, तो 60 साल का मतलब आप 60 साल के बाद जिसके मालिक हो गए, यही होता है ना। आए किस लिए थे यहां वो 60 साल पहले, आए थे अपने कल्याण के लिए, लेकिन हुआ क्या, उल्टा हो गया, अध्यास पड़ गया उनको जहां आते आते, अध्यास पड़ गया कि नहीं नहीं ये हमारा कल्याण करने वाला यहां कोई नहीं, हम खुद कल्याण हुए मुक्त तो हैं, भ्रम होता ना हमारे को। तो किराए के मकान पे यदि कोई मालकियत का हक करेगा ना कि मैं इसका मालिक हूं, तो उसको कोई भी आदमी कहेगा ना कि तुम समझदार हो, ज्यादा से ज्यादा केस लड़ेगा ना और क्या करेगा, अंत में उसको हारना ही पड़ेगा, मालिक तो मालिक ही रहेगा, किराएदार किराएदार ही रहेगा। तो ये जो शरीर हमारे को प्राप्त हुआ है ना, हम इसके मालिक नहीं है, किराए का मकान है। तो कबीर साहब तो क्या कहते हैं पता आपको, बाबा अब ना बसो ये गांव, वो कहते हे बाबा हे परमात्मा, मैं अब इसमें गांव में नहीं रहना चाहता, घर की तो बात ही छोड़ो, गांव का अर्थ क्या हुआ, गांव एक घर का नहीं होता है, गांव में कई घर मिलके गांव बनता है। तो कबीर साहब कहते हैं कि ये जो प्रपंच रूपी गांव है ना संसार, अब मैं इसमें रहना नहीं चाहता, मैं अपने घर घर से तो परेशान हूं ही, मैं तो पूरे संसार में नहीं रहना चाहता, एक शरीर रूपी घर से मैं परेशान नहीं, पूरे संसार से परेशान हूं, बाबा अपना बसो ये गांव, क्यों नहीं मैं यहां रहना चाहता, क्यों नहीं रहना चाहता। जब आप घर में मालकियत ना हो, किराए का घर हो, तो वहां क्या क्या आपको परेशानी पड़ती है, एक तो एक महीने के बाद किराया देना पड़ता है, दूसरा बिजली का बिल देना पड़ता है, पानी का बिल देना पड़ता है, कितनी परेशानी होती है, इसलिए होती है कि आप उसके मालिक नहीं है, मालिक को भी देना पड़ता है लेकिन आपको उससे ज्यादा परेशानी होती है। बाकी चीजें तो मालिक भी देता है, कई चीजें ऐसी होती है जो आप मालिक के अधीन होते हैं ना, वो सबसे बड़ी परेशानी होती है। तो कबीर साहब कहते हैं कि मैं इस गांव में नहीं रहना चाहता, क्यों नहीं रहना चाहता, घड़ी घड़ी का लेखा मांगे, एक एक घड़ी का लेखा देना पड़ता यदि मैं यहां रहता हूं तो, इस ऐसी जगह मेरे को नहीं चाहिए जहां एक एक मिनट का हिसाब देना पड़े, वहां मैं नहीं रहना चाहता। आप ही कह देते हैं कि यहां क्या हमारे को फंसा रखा है, एक एक पैसा लिख के आपको बताते रहो, हम यहां नहीं रहना चाहते, हम स्वतंत्र रहेंगे जहां हमारे को कोई ना पूछे, ये होता है ना हमको। तो कबीर साहब इसलिए कहते हैं कि यहां तो एक एक मिनट का लेखा देना पड़ता है, मैं यहां नहीं रहना चाहता हूं, मैं तो ऐसा हूं कि एक जगह लिखते हैं ना कबीर साहब के, कबीर जा दिन होमुआ पाछे भया आनंद। कबीर साहब कहते जिस दिन से मैं मर गया ना उस दिन के बाद मेरे पीछे बड़े बड़े सुखी हो गए, कई बार हम कहते हैं ना अच्छा मर गया तो हम तो सुखी हो जाएंगे, इसने परेशान कर रखा था हमारे को। कई आदमी ऐसे होते हैं कि उनके मरने बाद भी लोग खुश होते हैं, अच्छा मर गया तो अच्छा हुआ, पूरा गांव सुखी हो जाएगा। लेकिन कबीर साहब कहते हैं मेरे घर वाले बहुत सुखी हो गए जब से मैं मर गया हूं। जीते हुए अपने आप को बोल रहे हैं भी जब से मैं मर, कौन बोलेगा बाद में थोड़ी कि मरिया आके थोड़ी ये बात कहेगा कि जब से मैं मर गया हूं मेरे घर वाले बहुत सुखी हैं। आके कोई बताएगा, जो मर गया आदमी वो आके बताएगा कि जब से मैं मरा हूं सभी लोग खुश हैं, ऐसा कोई नहीं बताएगा। और जीते हुए बता रहे हैं कि जब से मैं मर गया हूं तो पाछे भया आनंद, मेरे पीछे सब लोग सुखी हैं। तो कल भी आपको स्वामी जी बता रहे थे ना कि राम भी अंदर है और मर भी रहे हैं, दो बातें कैसे होगी। फिर राम जिनके अंदर बसता है वो मरते नहीं है कभी भी, क्योंकि राम नहीं मरता, तो फिर भी हम मर रहे हैं। पूछो किसी से कि तुम मरोगे, कहते नहीं मरेंगे जरूर, और राम भी हमारे अंदर है। तो बात वही हो गई ना, कबीर साहब कहते कि जिस दिन से मैं मर गया हूं पाछे भय आनंद, क्यों कि मैं तो अपने परमेश्वर के पास पहुंच गया हूं, संगी भजे गोविंद। मेरे मरने से जो मेरे संगी है ना वो भी गोविंद का भजन करते हैं, कि उनको मेरी आशा खत्म हो गई तो क्या करेंगे, वो भजन ही तो करेंगे। जब उनको कोई आशा नहीं रही तो फिर क्या करेंगे, वो कहेंगे अब और कोई आसरा बचा नहीं है, एक कमाने वाला था वो भी मर गया, अब क्या करेंगे, भगवान के पास चलो, यही होता है ना। तो याद इन हो मुआ पाशे भया आनंद, मोहे मिलो प्रभ अपना संगी भजे गोविंद। क्यों कहते आनंद हुआ है, सुखी कौन हुए हैं, मोहे मिलो प्रभ अपना, मेरे को अपना प्रभु मिल गया, जहां से मैं बिछड़ा हुआ था भाव, जो मेरे को जीव भाव था वो मेरा खत्म हो गया, मैं ब्रह्म हो गया। तो संगी भजे गोविंद, संगी कौन थे, कौन थे संगी, चबन चलन रतन से सुनियर बह गए, हेड़े मुत्ती ता से जानी चल गए, या नैनो नीर बह तनखीना भय केश दुधवानी, रुदा कंठ शब्द नहीं उचरे अब क्या करे पुरानी। कहने का भाव संगी कौन थे जो हमारे साथ में थे, जो तन बुझा संग ही सो भी संग ना होया, जो हमारे साथ उत्पन्न हुआ था ना शरीर इंद्रे कर्ण अंताकरण, वो संगी थे, और कौन संगी था, वो क्या करते हैं, संगी भजे गोविंद। जब उनका मालक जो है ना, मालक जिसको उन्होंने नौकर बना रखा था, वो नौकर बना रखा था, नौकर हट गया उनका, नौकर उनका उनके कहने नहीं लगता, इंद्रियों के कहने नहीं लगता, अंताकरण के कहने नहीं लगता, संगी यही थे ना। तो जहां उनका मालक जाएगा, जहां उनका मालक कहेगा ना उनको नौकर को, वहीं जाना पड़ेगा। पहले उसने अपने आप को इनका नौकर मान रखा था, कहते अब हम मालक हो गए तो ये हमारे अधीन हो गए संगी जितने थे। तो जब मैं मेरे को अपना प्रभु मिल गया तो ये कहां जाएंगे, ये तो मेरे अधीन है ना, मेरे साथ ही जाएंगे, संगी भजे गोविंद। वो भी उसी गोविंद का भजन करते हैं, भाव मेरा भजन करते हैं। गोविंद कौन है, मैं हूं ना गोविंद, क्यों मेरे अधीन है तो जो मैं बोलूंगा वो ही करेंगे। वो कहते जब मेरे को अपना प्रभु मिल गया तो गोविंद कौन है, ये मेरे का मेरा भजन करते हैं, जैसे मैं कहता हूं मेरे पीछे पीछे चलते हैं। इसलिए कहते हैं कि जब से मैं मरा हूं तब से सभी लोग सुखी हो गए। ये इंद्रे खुद परेशान थे और मेरे को उन्होंने परेशान कर रखा था, तब जब से मैं गोविंद के साथ मिल गया हूं तो ये भी मेरा भजन करते हैं। तो कैसे मैं को मिटाएंगे, कैसे अजातवाद को समझेंगे, भी कहां अजातवाद है, कहां मिथ्यावाद है, कहां प्रतिबिंबवाद है, कहां उच्छेदवाद है, ये तो बहुत बड़े वाद है ना। यहां तो ब्राह्मणवाद सिखवाद भी खत्म हो रहा, बाकी बात तो दूर की बात है। यहां लौकिक व्यवहार में हमारे को ये वाद नहीं खत्म हो रहे, ये ब्राह्मणवाद है, ये सिखवाद है, ये मुसलमानवाद है, ये शरीर को लेकर के नहीं समाप्त हो रहे, वो तो अंदर के हैं, वो कहाँ समाप्त होंगे। बात इसी को हम बचा रहे हैं कि रजतादि वत दृश्य जे मृषा, जैसे रजत है, कागज है, भोटल है ना, तीन चीजें, वो मृषा है, मृषा का अर्थ है मिथ्या, मिथ्या का अर्थ समझ गए ना, वो प्रतीत होती है तीनों चीजों, परंतु जब देखेंगे तो फिर नहीं रहेगी वो, इसका मतलब है नहीं है, झूठी है। तो उसी प्रकार ये कहते हैं कि यदि ये रजत आदि मिथ्या हैं तो फिर सत्य क्या है, वहां विचार तो करनी पड़ेगी ना। हमारे को दूर से दिखाई पड़ रही ना चांदी, तो जब हम पास में गए जा करके देखा तो चांदी तो नहीं है, तो है क्या वहां सीपी है कि नहीं। जैसे आप दूर से देख रहे हैं रोड में जाते ना गर्मी के दिनों में जेठ आषाढ़ में, तो दूर में जाए दूर से देखेंगे तो लगता है कि रोड के ऊपर पानी है,
चमकती
बिल्कुल रोड के ऊपर पानी दिखता है कि हमारी गाड़ी लगता पानी में चली जाएगी। थोड़ा पास में जाएंगे तो पानी नहीं होता, तो क्या है वहां, रोड है ना, पानी नहीं है। तो जब सीपी में ये तीनों चीजें दिख रही थी, तो जब पास में गए तो सी ये तो नहीं है ना, कागज है ना, बोतल है ना, चांदी है, तो क्या है वहां सीपी, सीपी तो है ना। ये कहते सुगत सुक्ति का आदि वत, सीपी में दिखता है चांदी, तो वहां चांदी तो नहीं है सीपी है। रज्जू में दिखता है सर्प, तो सर्प तो नहीं दिखा, बाद में जब लाइट दे करके देखा रस्सी है, तो वहां क्या हुआ सीपी सत्य है ना, और यहां क्या है रज्जू रस्सी जो है सत्य है। जहां जो स्थानु में पुरुष दिखता है रात को, स्थानु पुरुष का मतलब हुआ जो टूटा हुआ वृक्ष खड़ा था ना दूर, तो कहते यहां को खड़ा है कोई आदमी खड़ा है, जब पास मर के जाकर के देखा तो आदमी उदमी नहीं था, टूटा हुआ मुड था उसका। तो वो तीनों चीजों तो है ना वहां, सीपी भी है, सर्प भी है, और वृक्ष भी है टूटा हुआ। जो तीन बीच में दिख रही थी वो तो नहीं है, लेकिन जहां दिखती वो तो है ना। ते कहते सुक्ति का आदिवत दृश्य जे, सुक्ति का आदिवत ब्रह्म, अमृषा, अमृषा का अर्थ होता सत्य, मृषा का अर्थ होता मिथ्या, अमृषा जो मिथ्या नहीं है वो क्या है सत्य है। जैसे वहां सीपी सत्य है, यहां पर चांदी दिखती है, और जहां पर सर्प दिखता वहां रस्सी सत्य है, जहां स्थानु में पुरुष दिखता वहां स्थानु सत्य है, तीन चीजें है ना। उसी प्रकार ये कहते हैं कि यहां पर आपको जो प्रपंच दिखाई पड़ता है ना, ये तो है मिथ्या, लेकिन जिसमें दिखाई पड़ता वो तो है कि नहीं, सीपी सत्य है कि नहीं, रज्जू सत्य है कि नहीं, उसमें दिखाई पड़ती है ना सब चीजें, दिखाई पड़ने वाली तो नहीं है लेकिन जिसमें दिखाई पड़ती वो तो है। तो यहां कहते हैं प्रपंच आपको दिखाई पड़ रहा है, तीन अवस्था आपको दिखाई पड़ रही हैं, ये तो नहीं है लेकिन जिसमें दिखाई पड़ती है वो तो है ना। बिना किसी आधार के कोई कल्पित होती नहीं चीज, कोई ना कोई उसका आधार होता जिसमें आपको कोई दिखाई पड़ता है। जब तक पर्दा नहीं सामने तो फोटो दिखाई नहीं पड़ेगी आपको, लेकिन जब फोटो दिखाई पड़ने हट जाती तो पर्दा कहीं चले जाता है क्या, सिनेमे का होता नहीं पर्दा, फोटो जब दिखाई नहीं पड़ रही तब पर्दा तो है कि नहीं वहां, लेकिन पर्दे में दिखाई पड़ती ना, वो पर्दा नहीं है, वो पर्दे में दिखाई पड़ती है। ये कहते प्रपंच आपको दिखाई दे रहा है किस में, ब्रह्म में, प्रपंच तो नहीं है लेकिन ब्रह्म है, ब्रह्म है सत्य है वो। तो जिसमें जो चीज दिखाई पड़ती है वो उसी का रूप ही होती है, अलग नहीं होती है। जो चीज जिसमें दिखाई पड़ती है ना वो उसके अज्ञान से दिखाई पड़ती है, जो चीज आपको जिसमें दिखाई पड़ती है वो उसके अज्ञान से दिखाई पड़ती है। जैसे आपको दूर से सीपी का पता नहीं चला कि ये सीपी है, थोड़ा पता चला आधा कि कुछ पड़ा है, इतना तो आपको मालूम है कोई चीज पड़ी है। जब आपको उसका विशेष रूप से नहीं ना पता चला तब आपको भ्रम हो गया कि पड़ा तो है, पता नहीं मतलब चांदी पड़ी है कि कागज पड़ा है कि क्या पड़ा है, यहां कोई टेढ़ी मेढ़ी चीज पड़ी है तो आपको थोड़ा तो पता है कि कोई चीज पड़ी है, लेकिन ये नहीं पता कि क्या पड़ा है। तब आपके अंदर था सर्प का संस्कार, रस्सी का भी आपको पहले मालूम है कि रस्सी ऐसी होती है, सर्प का भी आपको मालूम है। तो जब ये पड़ी हुई दिखाई दी ना आपको चीज, तो उसका यथार्थ रूप से पता नहीं चला कि क्या पड़ा है, तो आपको दोनों चीजें दिमाग में है, आपके रस्सी भी है और सर्प भी है, तो आपको भ्रम हो गया कि सर्प हो सकता है, रस्सी का तो पता नहीं चला, तो आपको आगे सर्प है। तो क्या हुआ, जिस चीज में दिखाई पड़ रही ना वो चीज, वो हमारे को उसके रूप का पता नहीं चला तभी ऐसा हुआ। तो जब हमारे को जागृत या स्वप्न या सुषुप्ति दिखाई पड़ती है तो इसका मतलब क्या हुआ? हम अपने आप को जान नहीं पा रहे ना, तभी ऐसा हो रहा है ना, तभी तो ये दिखाई पड़ रहा प्रपंच। जब हमारे को ये नहीं पता कि मैं सत्य हूं, सत्य का अर्थ क्या होता, मैं कभी भी मरता नहीं हूं, तीनों कालों में मैं रहता हूं, मैं चेतन हूं, चेतन का अर्थ होता है कि मैं प्रकाश स्वरूप हूं और मैं आनंद स्वरूप हूं, भाव सुख रूप हूं। ये हमारे को मालूम नहीं ना है, इतना तो है हमारे को कि मैं हूं, पर मैं कैसा हूं ये मालूम नहीं है। इतना तो सबको मालूम है ना कि मैं हूं, ये नहीं पता कि मैं कैसा हूं। तो तभी हमारे को जब ये नहीं पता चला तो बीच में ये सब दिखाई देने लगा कि मैं कैसा हूं। प्रश्न तो ये था ना, मैं कैसा हूं, इतना तो मालूम है कि मैं हूं। तो जब मैं को हमने इसके साथ जोड़ा, इसके साथ मैं हूं को इसके साथ में जोड़ा तो क्या हो गया, मैं गोरा हूं, मैं काला हूं, मैं मोटा हूं, मैं को इधर देखना ना, तो मैं क्या है, इसी को देखा हमने कि मैं हूं, मैं कैसा हूं, मोटा हूं, मैं पतला हूं, मैं गोरा हूं, मैं काला हूं, इसके साथ जोड़ दिए ना। जब हमारी आंखें इंद्रियों ने संबंध किया संसार के पदार्थों के साथ, तो फिर हमने क्या कहा, मैं जागता हूं। जागृत का मतलब क्या हुआ, स्पष्ट रूप में जो व्यवहार हम करते हैं ना, लेना देना आना जाना, इसी को हम जागृत मानते हैं। ये जागृत है ना, ये जागृत अवस्था जिसमें स्पष्ट व्यवहार होता है, तो उसको हम कहते हैं मैं जागत हूं। तो मैं थोड़ी जागृत हूं या मैं जागता हूं, यही कहते ना मैं जागता हूं, तो जागना क्या है, मैं थोड़ी जागता हूं। जागने का मतलब होता कि मेरे इंद्रिय जो है ना स्पष्ट रूप से काम कर रहे हैं, यही है ना। इंद्रियों का काम है, आंखों का काम है देखना, कानों का काम है सुनना, रसना का काम है स्वाद लेना, तो ये सब जागृत ये है ना, ये जागृत है, ये काम कर रहे हैं। लेकिन मैं कहता हूं मैं जागता हूं, मैं खाता हूं, मैं सोता हूं, मैं पीता हूं, मैं देखता हूं, तो यही तो जागृत को हमने अपने आप में माना है ना, जागृत अवस्था को हमने अपने आप में माना है कि नहीं, हम अपने को जागृत अवस्था ही मान रहे हैं, जागृत अवस्था ही मान रहे हैं ना, इसलिए कहते मैं सुनता हूं, देखता हूं, पीता हूं, खाता हूं। ये जागृत अवस्था जो है मिथ्या है, लेकिन हमने अपने आप में मान रखी है, अपने आप में नहीं मान रखी, अपने आप को ये मान रखा है, अपने आप को जागृत अवस्था ही मान रखा है और स्वप्न मान रखा अपने आप को। स्वप्न में जो दिखाई दे रहा है वो है कहाँ, बताया था हमने ना, स्वप्न में हम खा के रज के कहीं से भंडारा खाया उठे हैं तो फिर भूखे हैं, कुछ भी नहीं हुआ ना। तो मतलब ये हुआ कि हमने अपने को जागृत मान रखा है, स्वप्न मान रखा है, सुषुप्ति मान रखा है। लिए कहते हैं कि जैसे रूप आदि दृश्य जो है सीपी में, चांदी आदि जो दिखाई पड़ रहा ना सीपी में, वो मिथ्या है, मिथ्या मतलब मिथ्या है, उसमें सत्य क्या है, सीपी सत्य है, सर्प सत्य है, स्थाणु सत्य है। उसी प्रकार ये कहते हैं कि जैसे ये तीन चीजें जब चार चीजें सत्य है ना, उसी प्रकार ब्रह्म अमृषा, अमृषा का अर्थ ब्रह्म सत्य है, ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, यही है महाराज जी, ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, ब्रह्म सत्य है जगत मिथ्या है। जीव ब्रह्म ऐव न परः, जीव ब्रह्म ही है और कुछ नहीं है। सो प्रभ दूर नहीं, प्रभ तू है, वो कहते प्रभु कोई तेरे से दूर नहीं है, तू ही प्रभु है। तो इसका मतलब ब्रह्म जो है वो अलग नहीं हमारे से, यानी कि हम जीव अलग हैं, ब्रह्म अलग है। केवल हमारे को जे ब्रह्म से दिखाई पड़ता है, अध्यास से दिखाई पड़ता है, तो ये इन्होंने कहा कि सुगति का आदिवत ब्रह्म अमृषा, जैसे सीपी सत्य है, रस्सी सत्य है, स्थाणु सत्य है, उसी प्रकार ब्रह्म सत्य है। तो जैसे चांदी सत्य नहीं है, भोडल सत्य नहीं है, कागज सत्य नहीं है, सर्प सत्य नहीं है, उसी प्रकार ये जागृत स्वप्न सुषुप्ति और सारा प्रपंच सत्य नहीं है। ये तो बहुत स्पष्ट बात होगी ना। अब इसको भी यदि हम कहें कि हमारे समझ में नहीं आता, तो क्या करें। यह स्पष्ट हो गया कि यह तीनों अवस्था सत्य नहीं है, जैसे चांदी सत्य नहीं है, स्थाणु सत्य नहीं है, सर्प सत्य नहीं है। तो यही बात केवल गुरु लोग बताते हैं, और गुरु लोग मुक्ति आपको खरीद के नहीं देते कहीं आपके हाथ में भी ले जाओ। मुक्ति ऐसी चीज नहीं है कि आपको पकड़ा देंगे ये लो। वो वेखे ओना नजर ना आवे बहुत आए हो विडाण है। एका माई जुगत व्याई तीन चेले परवान, एक संसारी एक भंडारी एक लाए दीवान। ओह वेखे ओना नजर ना आवे बहुत आए हो विडाण। चर्चा चलती है कि वो वेखे ओना नजर ना आवे बहुत आए हो विडाण, मतलब कहने मात्र है कि वो वेखे ओना नजर ना आवे। कहते कि परमात्मा देखता है ब्रह्मा विष्णु में, इसको नजर नहीं आता। यही कहते बहुत, यही अर्थ होता ना महाराज जी कि वो वेखे उन्होंने नजर ना आवे। एक संसारी एक भंडारी का अर्थ क्या हुआ, एक संसारी ब्रह्मा एक भंडारी विष्णु, एक लाए दी एक नो लैता करने की आदत है, स्वभाव है शिव जी। ये जो तीन है ना कहते माया ने बनाए हैं, पर वो वेखे उन्होंने नजर ना आवे। ज्ञानी लोग अर्थ करते हैं कि वो परमात्मा देखता है लेकिन इनको नजर नहीं आता। यही महाराज अर्थ होता ना, यो परमात्मा देखता है इनको नजर नहीं आता। तो इसको कैसे समझेंगे कि परमात्मा देखता है इनको नजर नहीं आता। जिसने पूरी सृष्टि बना दी ब्रह्मा ने, उसको परमात्मा नजर नहीं आता क्या? ये तो है ना महाराज बात। इसका मतलब वो अज्ञानी है जिसने ऐसी सृष्टि बना दी है। पूरे संसार को ब्रह्मांड को रिजक दे रहे हैं विष्णु जी महाराज, क्या अज्ञानी है वो, उनको नजर नहीं आता ब्रह्मा परमात्मा पूरे संसार की लयता कर रहे हैं, संहार कर रहे हैं शिव जी, तो उनको नजर नहीं आता। तो जो अज्ञानी आदमी है वो तो अपना, वो तो एक एक किसी अज्ञानी आदमी जो बिल्कुल मूर्ख है ना, वो घड़ा भी नहीं बना सकता। बना देगा घड़ा वो, घड़े के लिए उसको ज्ञान चाहिए भी घड़ा कैसे बनता है। तो ज्ञान उसको कब होगा, जब वो चेतन होगा, जब उसके अंदर चेतन सत्ता होगी तभी तो बनाएगा। तो ब्रह्मा ने पूरा संसार तो बना दिया लेकिन वो वेखे उन्हें नजर ना आवे, कहते उनको नजर नहीं आता। इसका मतलब उनके अंदर चेतना है ही नहीं है, तभी तो उनको नजर नहीं आता ना। तो यहां कैसे समझेंगे आप लोगों के, तो ऊपर की बात है, आप लोगों के समझ में कम आएगा। इनको कह रहे हैं कि महाराज जी वहां बात यही है जो यहां वाली बात है ना, ब्रह्मा विष्णु महेश को नजर तो आता है, मालूम तो है उनको, लेकिन कैसे। वो कहते हैं कि इदम रूप से नहीं कह सकते। उसको कैसे कहेंगे इदम रूप से, रज्जू को तो कह सकते हैं, उसको कहेंगे कैसे। नजर तो उनको आता है, नजर भाव उनको साक्षात्कार तो है, वो वेखे उन्हें नजर ना आवे जोड़ी जो बात है ना, कहते वो वेखे उन्होंने साक्षात तो किया है, साक्षात्कार तो उन्होंने किया है, वो ना नजर ना आवे। किस दृष्टि से नजर ना आवे, जैसे हाथ के ऊपर आंवला रखा होता ना आंवला, ऐसे ऐसे नजर ना आवे। देखते तो हैं हमारा, साक्षात्कार तो उन्होंने किया है लेकिन किस रूप में, अहम रूप में साक्षात किया है, इदम रूप में नहीं। वो देखते हैं, वो वेखे कहते हो, देखते हैं उसको, देखते हैं भाव, उन्होंने साक्षात्कार किया है, नजर ना आवे। लेकिन दूसरों की दृष्टि में नजर नहीं आता कि इनके पास कहाँ है, और इदम करके नहीं दिखा सकते कि ये है। इदम कहते हैं पास वाले को, ब्रह्मा विष्णु महेश उन्होंने तो अहम रूप में साक्षात्कार किया है लेकिन दूसरे को इदम रूप से नहीं दिखा सकते कि ये रज्जू पड़ी है, ऐसे नहीं कह सकते ये है परमात्मा, ऐसे नहीं कह सकते, वो नहीं ना कह सकते।
कह तो सकते हैं, उनको समझ नहीं आएगा।
नहीं, उनको ये लोग कहते हैं कि उनको ही नजर नहीं आता।
तो ये तो वो कहते हैं जिनको नहीं पता,
नहीं पता
तो उन्हीं को पता नहीं,
उनको अहम रूप से उन्होंने जाना है, अहम रूप से उन्होंने जाना है। अहम रूप से कहेंगे तो किसके समझ में नहीं आएगा, और इदम रूप से वो दिखा नहीं सकते कि ये जैसे रज्जी पड़ी है ऐसे है, ये पड़ा है, फोटो नहीं ना दिखा सकते उसकी रज्जू की तरह, केवल इदम रूप से उसका व्याख्यान कर सकते हैं, ऐसा है ऐसा है ऐसा है, दिखा नहीं सकते क्योंकि वो किसी प्रमाण का विषय नहीं है, दिखाएंगे कैसे। तो हमारे साथ भी तो ऐसे ही हो रहा है, ये जो कहते हैं कि तीन चीजें हैं ये मिथ्या हैं, लेकिन जिसमें भासती है ना वो सत्य है। रज्जू सत्य है, सीपी सत्य है, स्थाणु सत्य है। वही बात हर रोज बोलनी पड़ती है कि राज भुयंग प्रसंग जैसे है, अब कश मर्म जनाया। रविदास जी महाराज भी कहते हैं कि रज्जू और सर्प का जो प्रसंग है ना, मेरे को गुरु ने वही दृष्टांत देके बताया है। हमारे को ही केवल ये दृष्टांत नहीं दिया कि रज्जू में जैसे सर्प होता। कबीर रविदास जी को उनके गुरु जी ने कहा ये संसार कैसे है, जैसे रज्जू में सर्प होता है। रविदास जी को उनके गुरु जी ने यही दृष्टांत दिया। वो कह रहे हैं ना कि राज भुजंग प्रसंग जैसे है, जैसे रज्जू में सर्प का प्रसंग है ना, अब कश मर्म जनाया। मेरे को गुरु जी ने ये मर्म समझाया, ये भेद समझाया कि पुत्र ये शिष्य ये संसार कैसा, जैसे रज्जू में सर्प है। मेरे को कहते हैं उन्होंने यही दृष्टांत दिया। कहां वहां ख्याति भी पूरी लगा दो महाराज जी, माधवे क्या कहिए, भ्रम ऐसा पांच प्रकार की ख्याति लगा दो, पांच प्रकार का भ्रम लगा दो, छह प्रकार का ध्यास लगा दो, उसी पंक्ति पर वो पूरा विचार चंद्रोदय का पूरा वेदांत उसी शब्द में लगा दो। तो रविदास जी ने जब वेदांत पढ़ना शुरू किया तो उनके गुरु जी ने यहां से शुरू किया कि माधवे क्या कहिए भ्रम ऐसा। उनके गुरु जी ने कहा है कि आपको केवल अध्यास को समझना है, बाकी आप सब समझ जाएंगे। तो हमें तो अध्यास ही समझ रहे हैं। रविदास जी महाराज कहते हमारे को गुरु जी ने जब अध्यास का लक्षण करके खोल के समझाया तो उन्हें दृष्टांत यह दिया कि राज भुजंग प्रसंग जैसे है, आपका मर्म जनाया। पहले कहते ऐसा हुआ, नरपतेक सिंहासन सोया, सपने भया भिखारी। ये दृष्टांत दिया कहते हमारे गुरुजी ने कि जब एक राजा बैठा बैठा सिंहासन पर उसको नींद आ गई, दिन में बैठे बैठे सिंहासन पे नींद आ गई, तो उसको सपने में लगा कि मैं भिखारी हो गया। लेकिन है क्या था, अच्युत राज, उसका राज्य तो था, राज्य में तो बैठा ही था, वो राज्य उसका था, कहीं गया नहीं है, वहीं बैठा था महल में। लेकिन विचरित दुख पाया उसने स्वप्न के कारण, अपने आप को स्वप्न अवस्था मान के तो विचरित दुख पाया, उसी राज से बिछड़ के दुख पाया जिसमें बैठा था, वो राज्य पर था बैठा, तब दुख पाया। सो गति भई हमारी, उसने गुरुजी को प्रश्न किया कि गुरुजी हमारी वो गति हो गई जैसे राजा के साथ हुई थी। जे रविदास जी ने प्रश्न किया कि हमारी ये हालत है। हाँ जी, राजा जनक, राजा हरिचंद, किसी राजे का देते हैं तो ऐसे हमारे साथ हुआ, ये हमारी हालत है गुरुजी, हमारे को बताइए। तो गुरुजी ने क्या क्या, ये तो भ्रम है रविदास, कुछ नहीं है। माधवे क्या कहिए, भ्रम ऐसा जैसा मानिए। तो गुरुजी ने उत्तर दिया कि जैसा मानते हो ना कि राजा भिखारी हो गया, राजा भिखारी नहीं हुआ, तो वहीं बैठा है जनक अपने राज्य पे बैठा है, आपके साथ भी वो कहते ऐसे ही हो रहा है जैसे राजे के साथ हुआ। तो फिर कहते गुरुजी ने दृष्टांत दिया कि राज भुजंग प्रसंग जैसे है। फिर गुरुजी ने बताया कि जैसे रज्जू में सर्प है ना, उसी प्रकार है संसार, अब कश मर्म जनाया। तो जब जना दिया कहते तो अब क्या हुआ, कह रविदास हाथ पे नेरे, अब इतना नेड़े, अब इतना समीप में लगता है आत्मा कि हाथ से भी नेड़े, हाथ देखो कितना नेड़े है शरीर के, हाथ कोई अलग थोड़ी है। कह रविदास हाथ पे नेरे, अब तो कहते मेरे को अपने हाथ पांव से भी पास में लगता है मेरा अपना आप। तो हाथ पांव का मतलब अटैचमेंट है, अलग नहीं है हाथ, उससे भी नेड़े क्या हुआ। सहजे होए सो होई, परंतु ऐसे नहीं कहते एकदम छलांग लगा करके नहीं हो गया, ऐसा समय लगा है। गुरु जी ने जब बताया तो हमने चिंतन किया है तब हमारे को लगा है। कह रविदास हाथ पे नेरे, क्योंकि घट घट में हर जूब सह वाली जो वृत्ति है ना, जो अवस्था है, वो एकदम थोड़ी बन जाती है, उसमें पद्धति से चिंतन करना पड़ता है। जब एक एक चीज को हम हटाएंगे ना तभी होता है। जब आप कहीं मिट्टी खोदते हैं ना, मिट्टी अथवा पानी निकालते हैं ना मिट्टी से, तो एकाएक पानी थोड़ी निकल आता है। बोर करते ना हम लोग, तो ये थोड़ी है कि आपने बोकी नीचे डाली तो उसी समय पानी आ जाएगा। कितने प्रकार की मिट्टी आती है, आपने बोर नहीं किया, हमने किया है, हमारे को मालूम है। बोर हमने किया है, हमारे को मालूम है कि पहले मिट्टी ये वाली आती है, फिर उसके नीचे चीकनी मिट्टी आती है, फिर उसके नीचे जा करके रोड आते हैं, पत्थर आते हैं, कंकड़ आते हैं, तब नीचे से पानी आता है। तो ये परतें हटानी पड़ती है ना, पानी को हमने निकाला कहीं से नहीं है। गुरु मारे कहते हैं कि ये आपको भ्रम है, धरती ऊपर मेघला बरसत है, गुरु महाराज जी का वचन है कि धरती ऊपर मेघला बरसत है, क्या धरती मध्य पानी नहीं? गुरु अर्जन देव महाराज जी का वचन है कि धरती के ऊपर से मेघ बरस रहा है, क्या धरती मध्य पानी नहीं? धरती मध्य पानी पर गास्या, धरती के बीच में पानी है। बिन पगा बरसत फिराही, बिना पाओ के बरसता फिरता है, वो है तो यही है। पानी तो धरती में है, फिर भी मेघ ऊपर से बरसता है। ये सब रहस्य की बात है ना, कि घर में अमृत भरपूर है, मनमुखा साध ना पाया। हमारे को लगता है कि हम मुक्ति कहीं से लाएंगे, महात्माओं के पास जाएंगे तो वहां से मुक्ति मिलती है। यही होता है ना कि महाराज हम आपके पास आए हैं, क्या क्या लेने आए हैं? मुक्ति, हमारे को मुक्त कर दीजिए। तो इसका मतलब मुक्ति खरीद के मिल जाएगी महात्मा के पास, उनके पास जाएंगे, उनको माथा टेकेंगे तो मुक्ति पकड़ा देंगे हाथ में हमारे, कुछ नहीं करेंगे वो। वो आपकी जैसे बोर बोर किया आपने ना, परत हटाते हैं, परत हटाते हैं। वो कहते हैं कि जो माल विक्षेप आवरण है, ये तीन परत आपके ऊपर जमी हुई, इसको हटा दो तो अंदर से आप निकल आएंगे। हाँ जी, हाँ बस युक्ति बताते हैं इसको हटाने की, बस तीन चीजों को हटा दो तो उसके बाद क्या होता, मुक्त तो है ही है ना, कोई बंधन है ना मुक्त है, कुछ भी नहीं है। ये केवल हमारे को अध्यास है, जैसे रविदास जी का हट गया ऐसे हमारा भी हट जाएगा। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।